શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, મૂળ પ્રવચન 10 મિનિટનું જ છે.
યોગ્યતા કે વિષય મે પહેલે વિચાર કરના હૈ યહી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કા બલવાન કારણ હૈ ઓર બિના યોગ્યતા જ્ઞાન કભી કભી પ્રાપ્ત હોતા નહીં. ઇસકે બાદ ધ્યાન લેને કે લિયે ક્યા લી હૈ
યોગ્યતા અપને આપ હોતી હૈ કોઈ
યોગ્યતા હૈ શુદ્ધિ કી ध्येय बांधने के लिए प्राप्त होती है परिपूर्ण शुद्धि मोक्षार्थीपना. सुबह जो विषय चल गया शुरू में ही कि जिसको पूर्ण शुद्धि चाहिए अपने जीवन में पूर्ण शुद्धि का आदर्श वो मतलब मामूली रूप से नहीं लेकिन इसका आदर्श के रूप में दृढ़ निश्चय संकल्प दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय हो गए कि मैं पूर्ण शुद्धि चाहिए. कब 5-25 भाव में नहीं अब होवे तो दूसरी सेकंड नहीं चाहिए. इस सेकंड में हुए वर्तमान क्षण में हुए दूसरे क्षण में नहीं चाहिए. ऐसा तीक्ष्ण आदर्श का संकल्प हो तो योग्यता के और जो पहलू हैं वो सब पैदा होने लगते हैं. इस प्रकार के हैं कि इनको अपनी जीत की जो भावना है असाधारण अपूर्व भावना पैदा होती है. इस विषय में कैसे आगे बढ़े अपने सोच कैसा है उनको जाने इस विषय में कोई अपूर्व जिज्ञासा पैदा होती है. अपना प्रयोजनभूत काम करने के विषय में ही ज्ञान में एक लक्ष्य बन जाता है कि इसमें मेरा प्रयोजन कहाँ आता है. इतनी लंबी छोटी बातों में ऐसा एक प्रयोजन का दृष्टिकोण पैदा हो जाता है. बहुत अपने स्वकार्य के विषय में लगन से वो प्रवर्तता है और बड़ा जोश से मेरे गगज से काम करता है. ये हमारा जिला विश्वविद्यालय मिलता है लगत से काम होता है. मैंने जोर से आगे बढ़ने की तीव्र वृत्ति रहती है उसको लगत कहते हैं. ऐसे कई प्रकार के जो आत्मार्थी के मोक्षार्थी के जो योग्यता के लक्षण हैं जो आगे 105 नंबर में और किसी जी ने बताए अपने दुर्दशा के दबाने वाले हैं और जो प्रकार के हैं सत्पुरुष के चरण के इच्छुक सबसे पहले नंबर के लिए ये सब प्रकार जो है पैदा होने लगते हैं. इसके पीछे 300 के पत्रांक का आखिर व लास्ट पैराग्राफ है संख्या है 21. एक नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे. एक बड़ी निश्चय की बात तो मुमुक्षु जीव को यही करना योग्य है कि सत्संग जैसा कल्याण का कोई दूसरा बलवान कारण नहीं है. देखो ज्ञानी की क्या शिक्षा है, ये परमात्मा की शिक्षा है क्या है? मुमुक्षु जीव के लिए हमारा कोई खास कहने का जिसमें बहुत वजन रखा है ऐसी कोई बात है तो यही कि सत्संग जैसा कल्याण का कोई दूसरा बलवान कारण नहीं है. सत्पुरुष का योग मिले ये वास्तव में सत्संग है. अगर सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग संभव न हो और आजीविका आदि दूसरे प्रकार के उदय के वश दूर क्षेत्र में बसना हुए रहना हुए तो ऐसे इस विचार के जो इस रुचि के जो इस अभिप्राय के जो जीव हैं जो इस विचार में सदृश विचारधारा में शामिल होने वाले हो, उत्सवों पर साथ में मिलना जुलना और विचारों के इस विषय में आदान प्रदान करना, विचार विमर्श करना, किसी को ही सत्संग कहने में आया है। समगुणी पुरुषों का आत्माओं का साथ में मिलके गुण के विषय में, गुण प्राप्ति के विषय में विचार विमर्श का योग को सत्संग कहने में आता है। ये तो सत्पुरुष का योग मिले तो बहुत बेहतर है, इसमें तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा योग न हो तो ये स्वाध्याय की जो प्रक्रिया है, इस व्यवहार में गुरुदेव ने अच्छी तरह समाज को जागृत करके हजारों लाखों जीवों को इसमें जुड़ा है, उसी को ही हम आज्ञा समझ के इसका पालन करें। ये कल्याण का इसके सिवा कोई बाहर में दूसरा कोई बलवान कारण नहीं। और सत्संग में निरंतर प्रति समय निवास करना, प्रति समय अर्चन निवास करना, निवास चाहना, हुए नहीं हुए वो तो उदय के अधीन है, लेकिन इनकी रुचि इनकी चाहना ऐसी होनी चाहिए कि मैं निरंतर प्रति सत्संग में निवास करूं। छोटा मोटा काम आ जाए तो सत्संग को गौण कर दे, स्वाध्याय को गौण कर दे। सुबह क्या करें, सुबह में तो सब्जी लानी है, 12 बजे भोजन, 11 बजे ऑफिस टाइम पे कैसे पहुंचे, तो स्वाध्याय में नहीं आ पाए। ऐसे मामूली काम में भी जो सत्संग को अवॉइड करता है, दूर करता है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी कोई सत्संग की चाहना ही नहीं है, आखिर का छिल्ला नंबर रखा है, क्या मिलने वाला है कि सत्संग में वो आएगा तो भी मिलने वाला नहीं है। जिसका प्रधान नंबर होना चाहिए, पहला मुख्य जिसका प्रधान होना चाहिए, सत्संग के परिणाम, सत्संग के भी परिणाम, परिणाम नहीं विरुद्ध परिणाम का प्रत्येक क्षण में विचार करना। सत्संग में नहीं रहते हैं तो जगत के उदय के प्रसंग असत्संग से जीव को घिरे हुए रहते हैं, इसका विचार करना। हर समय जो इसका संस्कार पड़ता है आत्मा में, अनेक प्रकार के असत्संग के विषय में जो भी आत्मा को असर आती है, इसका गहरा विचार करना, यह श्रेय रूप है। ये इनका प्रैक्टिकल साइड लिया है। विचार करना, मैंने सत्संग की प्राप्ति नहीं है इस काल में, मुझे जो असत्संग के विषय में किस किस प्रकार के परिणाम होते हैं इसका अवलोकन करना, विचार करना, मतलब इसका अवलोकन करना, इसके पर ध्यान देना, वह श्रेय रूप है। बहुत बहुत करके यह बात अनुभव में लाने जैसी है, ये मामूली विचार नहीं है। बहुत बहुत करके मैंने इसकी गहराई में जाके सत्संग का क्या लाभ है इसका अनुभव करके इस विषय को समझना चाहिए। सत्संग से लाभ होता है ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं समझना चाहिए, इसका कुछ अनुभव करके समझना चाहिए कि इसमें हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका अवलोकन करके सत्संग करना चाहिए। ऐसी जो सत्संग की आवश्यकता है इस विषय पर यहाँ ध्यान दिया है। कल मैं इसी विषय को एक आगे खोलने वाला सत्रांक है 609 नंबर का
सत्रांक में
बुनियादी भाव की प्रवृत्ति कैसे होती है इसका विवरण आया, साथ ही ऐसा कहने वाला भी ज्ञानी होता है और इस बात को कहते हुए कहने वाले के प्रति कोई गलत विचार न हो इसलिए इस विषय में ये 7 नंबर के रचनामृत में स्पष्टीकरण आया है। कहते हैं यद्यपि ज्ञानी भक्ति की इच्छा नहीं रखते, ना ज्ञानी की भक्ति का विषय का प्रतिपादन इस तरह से आया है कि जैसे कहने वाले विषय को ज्ञानी होते हैं तो गलत नहीं समझे कि इनको कोई भक्ति की अपेक्षा है इसलिए ऐसा कहते हैं, तो स्पष्टीकरण करते हैं यद्यपि ज्ञानी भक्ति की इच्छा नहीं रखते परंतु मोक्षाभिलाषी को उसे किए बिना उपदेश परिणमित नहीं होता। ये सामान्य वस्तु स्थिति है, भक्ति में भी जिससे काम निकालना हो बाप बन के काम नहीं निकाल सकता, भले ही करोड़पति हो सर्विस ऑफिसर से वो काम निकालना चाहेगा, गवर्नमेंट का ऑफिसर हो इनकम टैक्स का, भले ही 1200 रुपये का पगारदार हो, तनख्वाह उनको 1200 मिलती हो, और अपने या 3000 वाले तो डजन बंद हो, 3000 वाले तो उसमें नौकरी में रखते हो, एक दो को नहीं 10-20 को, फिर भी काम निकालना हो तो उसका बाप बन के काम निकाल, इसके साथ साफ 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 करके उसका साइन करवाना होगा। ये बातें तो सब अनुभूत है ही लोगों को, जरा भी बोलने में फर्क हो गया गड़बड़ी हो जाती है, ये कोई मामूली सी बात है। यहाँ तो मोक्षाभिलाषी है और मोक्ष लेना है, अनंत जन्म मरण का दुख मिटाना है, अनंत समस्याओं को मिटानी है और अपना शाश्वत हित करना है, उसे लिए है एक स्वाभाविक परिस्थिति है के बड़े ही ज्ञानी को कोई अपेक्षा न हो फिर भी मोक्षाभिलाषी को उसे किए बिना उपदेश परिणमित नहीं होता। इनके प्रति इतना आदर भाव आए बिना इनके वचन में रही हुई मूल प्रयोजनभूत बात नजर में नहीं आएगी और इसका ग्रहण होने का तो कोई सवाल ही नहीं। समझे नहीं, उस पर गहरा विचार करे नहीं, तो फिर उसको ग्रहण करने के लिए प्रयोग होगा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। मोक्षाभिलाषी को उसे किए बिना उपदेश परिणमित नहीं होता और मनन और निधिध्यासन का हेतु नहीं होता, यही बात नहीं है। उपदेश परिणमित तो नहीं होता लेकिन इसका मनन में और इस विषय पर उसको एकाग्र होने से कोई विशेष विचार करना, इसकी गहराई में जाना ये संभवित नहीं है। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञानी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, भाषा प्रयोग तो करनी चाहिए ऐसा आया है, लेकिन होनी चाहिए ऐसी बात है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कृत्रिमता से करें और इसकी फल प्राप्ति होए कि चलो भक्ति का भाव आता नहीं है लेकिन करनी चाहिए ऐसा समझ में आया है तो करो, इस कार्य में लगो। ऐसा नहीं, अपने में अपनी हित बुद्धि के वश, अपना हित होने का कारण दिख के उसको भगवान भक्ति सहज उत्पन्न होनी चाहिए जी, सहज उत्पन्न होनी चाहिए उसको, आदेशात्मक भाषा में करनी चाहिए ऐसा कहने में आता है। ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है, मैंने कहा है, ऐसी भाषा नहीं आती, मैंने करने वाला अपना अहम भाव को प्रदर्शित करता है, ज्ञानियों को अहम भाव मिटा है, शहर इनकी भाषा में प्रयोग नहीं आता है कि देखो मैं कहता हूँ तुम सुनो, मैं कहता हूँ कि तुम सुनो, मैं ये कहता हूँ, ऐसा जो नहीं आता। अध्यात्म की उच्च कोटि की बात बताते हुए भी प्रायः तो सदगुरु के नाम पे चढ़ाते हैं, आचार्य भी कभी ऐसा करते हैं, हमारा गुरु ने ऐसा किया, हमारे गुरु ऐसे कहते थे, पर ऐसा बोध हमने हमारे गुरु की कृपा से हमको मिला है ऐसा कहते हैं, इतना विनय और दीनता से अहम भाव का उनको ये भाव नहीं है तो भाषा में भी सहज जैसा ही प्रकार बन जाता है। बताते जाते हैं और कहते जाते हैं कि ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है, त्रिदृष्टि प्रकाश के पहले विभाग में सोमानी जी के सब पत्र है, पत्र लिखे थे तब तो उनको ही नहीं पता था कि ये चीज पुस्तकार होगी, कई पुत्र तो उन्होंने फाड़ दिए हैं, तो लिखे थे, पता चला कि शायद इनकी प्रसिद्धि कर लेंगे लोग, तो जो अपने हाथ में आए उसको तो फाड़ दिए, प्रसिद्धि का कारण हुए नहीं खा गए, जो बच गए वो भी पुस्तकार हो गए, वो भी इनके देहांत के बाद। ध्यान से आप देखोगे तो पता चलेगा के अध्यात्म के दृष्टि के टॉप लेवल का तत्वज्ञान का सिद्धांत रूप प्रतिपादन जहाँ जहाँ आया है वहाँ उन्होंने इस बात को गुरुदेव के खाते में चढ़ाई। मैंने ये कहा है ऐसी बात ध्यान से देख लेना, अगर नजर नहीं गई हो इस प्रकार से तो अभी भी देख लेना कि जहाँ जहाँ ये बात आई है वहाँ गुरुदेव ऐसा कहते हैं, ऐसा करके उन्हें मैं कहता हूँ ऐसा नहीं लेते हैं। भक्ति तो बहुत ही उनकी प्रसिद्धि है, ये जाति भेद रूप भक्ति है, लोग भक्ति को करते थे गुरुदेव जी, लेकिन ऐसी भक्ति भी दूसरे मनुष्य में पाई नहीं जाती, ऐसी भक्ति का भी दूसरे ढंग का प्रकार था, उसको जाति भेद कह सकते हैं। ऐसी भक्ति से उन्होंने गुरुदेव की महिमा की, परमात्मा के रूप में देखे गुरुदेव को, तो प्रसिद्ध बात थी, और जो काम हो गया उसकी क्या कुशल करें कैसे करें, जिसका एक भाव में निवेड़ा हो जाएगा साधे अनंत प्रसिद्ध पद में विराजमान होंगे, इनकी क्या कुशल होती है, कैसे इस चीज से कीमत करे, है कोई जगत में इसकी बराबरी करने की। तो कहते हैं कि ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है, ऐसा करके लगा दिया। वर्तमान में इनके कोई सत्पुरुष की भेंट नहीं हुई, इसे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने नाम से कहने में ये कथन पद्धति ठीक नहीं लगती है, सत्पुरुषों ने कहा ऐसे कह रहे हैं। इसमें कही हुई बात सब शास्त्रों को मान्य है, सामान्य प्राणी को ऐसा लगता है कि ज्ञानी के विषय में अतिशयोक्ति हो रही है, चढ़ा बढ़ा के ये बात कह रही है, ऐसी बात नहीं है। ये वास्तविक परम सत्य है, इस विषय का एक परम सत्य है और एक ऐसा रसायन है तो जो जीव की दशा में अजीब सा परिवर्तन लाता है। आज थोड़ा विषय चल गया लोगों को, अजीब सा परिवर्तन लाता है। इनकी श्रद्धा में जो मिथ्यात्व की गाढ़ता है उसको मंद करता है, गालता है, मंद करता है मतलब इसकी शक्ति को क्षीण करता है। साथ ही इसकी जो ज्ञान की प्रयोजनभूत विषय में कमी है, अंधत्वता है, उसको दूर करता है, भूमिका को भूमिका की निर्मलता को ले आता है। ऐसा है जिसकी कीमत नहीं हो सके ऐसा कार्य हो जाता है। कहते हैं कि हमने ये बात को स्थापित किया, इतना नहीं है। यहाँ तो हम ये कहेंगे कि इसमें कही हुई बात सब शास्त्र को मान्य है, सभी शास्त्र की साक्षी हम देते हैं। ये बात भले ही हमारे आत्मा में से आई है, फिर भी इसकी साक्षी में विटनेस में सभी ज्ञानियों के साथ मौजूद है। अनंत काल तक जीव स्वच्छंद से चलकर परिश्रम करे, ऐसे ज्ञानी के शरण में जाने का भाव नहीं होवे और अपनी कल्पना से मति कल्पना से स्वच्छंद से चलकर परिश्रम कितना भी करें तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्त न कर सके, ऐसी परिस्थिति है। परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अंतर्मुख में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसी बात है। करें मैंने कर सके ऐसा भाव है तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इतनी बात नहीं लिया। यानी कि आज्ञा का आराधक अंतर्मुख में इतने भाव में वो बात नहीं लिया, कितने साल में वो बात नहीं लिया। अगर शक्ति को प्रकट करे तो आत्मा में इतनी सामर्थ है अपनी उपादान से अंतर्मुख में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। भगवान गौतम स्वामी महावीर स्वामी के मुख्य प्रधान गणधर थे, वैसे तो 11 थे गणधर, मुख्य प्रधान गणधर थे, अन्य मति में से आए हुए थे। वो खुद जैन मत में, जैन कुल में इसका जन्म नहीं हुआ था, शरीर का जन्म नहीं हुआ था, आत्मा का प्रोत्साह था। लेकिन जब ये भगवान की शरण में आए, क्या पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या असर हुई कि इसका स्वच्छंद छूट गया, मान गल गया, मेरे कल्याण का कोई परम हित का निमित्त है जिसके पास मेरे आना हुआ है। समो शरण में प्रविष्ट होते ही मान स्तंभ के पास में ही मान जीता, और पात्रता इतनी थी कि सारी सभा में असंख्य जीव होते हैं, तब तो हिंदुस्तान में 70 करोड़ नहीं समाते। ये तो 12 योजन के रेडियस वाला जो समोसरण होता है उसमें असंख्य जीव समाते हैं। ऐसा ही कोई अतिशय है कि वहाँ जगह की कमी नहीं पड़ती और इतनी गिरदे होती नहीं कि पंखे लगाए जाए, ये सब अतिशय का विषय। किसी को पसीना आवे इसकी कितनी भीड़ भी नहीं होती और न ये माइक वगैरह लगाया जाता है, यहाँ तो अगले बैठे वाला जितनी आवाज सुनता है उतना ही अंतिम मधु बैठा है उतना ही सुनता है। बारह इंजन में एक सी आवाज आती है, बिना ये माइक्रोफोन लगाए कुछ माइक लगाना पड़ता है, ऐसी इतनी ध्वनि की एक अतिशयता, तो इतनी मधुर वाणी है कि सुनने वाले को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे कान में कोई अमृत की धार हो रही है, बस ये धार होती ही रहे, बस उसको तृप्ति नहीं होती है। समय पर वाणी बंद हो जाती है, लेकिन उनको ये लगता है अरे ये क्या हो गया, ये तो बस चालू ही रह जाए, ऐसी मधुरता। जैसे इधर भी कंठ अच्छा होता है गाने वाले को तो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये तो मामूली प्राणी है, सामान्य पुण्य का ये योग है, ये तो मनुष्य गति का सर्वोत्कृष्ट पुण्य का अधिकारी है तीर्थंकर देवता, पर उनका ये उदय चल रहा है हरियंत दशा में। सब प्रकार के ऐसी व्यवस्था कुदरत बनाती है, कुछ भगवान नहीं बनाता है, न कोई देव बनाता है, ये सब भगवान भी निमित्त है, इनके पुण्यों के भी निमित्त है, देव भी निमित्त है, सब निमित्त है, जो बनता है परमाणु की रचना कहीं हो जाती है, इतनी हो जाती है कि ये कुबेर गणपति को लगता है कि क्या बन गया, कैसे बन गया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इनकी भी कोई धारणा नहीं थी कि इतना सुंदर ये चीज बनेगा, ऐसा बन जाता है। कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी की आज्ञा का आराधक जो है वो अगर शक्ति प्रकट कर लेता है गौतम गंधर्व जैसे, वही भव में वो चरम शरीर ही थे, शरीर का जन्म हुआ था अन्य मत में, और हजारों शिष्य के तो वो गुरु थे, इंद्रभूति नाम के वो बड़े ब्राह्मण के गुरु थे, हजारों शिष्य थे, बहुत मानने वाले थे, कितना मान सम्मान होता होगा उनका, छूट गया एक अस्तित्व, उसी भाव में सम्यक दर्शन, उसी काल में उसी समोसरण में सम्यक दर्शन, वाणी मुनिपद अंगीकार किया, चारित्र अंगीकार करके वहीं भगवान के गंधर्व के स्थान में पहुंचे, और भगवान के मोक्ष पधारने के बाद स्वयं मोक्ष में पधारे, विद्यालय में विराजमान है। कैसे हुआ कि भगवान की आज्ञा के आराधक बने, कहते हैं कि शास्त्र में कही हुई आज्ञाएं परोक्ष है, और वे जीव को अधिकारी होने के लिए कही है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा, मैंने प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करना चाहिए, ये भी मनुष्यों को समझने लायक विषय है, अपने मनुष्यों में भी कई ऐसे भ्रम फैले हुए हैं कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ज्ञानी को प्रत्यक्ष में बजाय इसके ये जो छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले आचार्य के शास्त्र में नहीं पढ़े हम, ये तो बेहतर बात है, उच्च कक्षा में विराजमान थे, शास्त्र में कई हुई आज्ञाएं परोक्ष हैं, शास्त्र वचन है जीव को योग्यता लाने में अधिकारीपणा होने में निमित्त बनते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्यों को प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करना चाहिए, इस विषय में ऐसा जिक्र है ग्रंथ में आगे पृष्ठ संख्या है 48 661 नंबर का। शास्त्र के विषय में कुछ गलत धारणाएं बन जाती है, रचना उसको प्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश कहा है। आगे वे कह चुके हैं कि अभिनिवेश का अभिनिवेश बाधक रहते होने से अगले प्रकरण नहीं है। दो अभिनिवेश हैं, लौकिक और शास्त्रीय अभिनिवेश, और ये दोनों अभिनिवेश जीव को बाधक है, वो मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर सकता है। जहाँ तक अभिनिवेश रहता है जीव मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर सकता है। उसमें भी शास्त्र का इस प्रकार से अभिनिवेश हो गए जो अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है, ये सशंकता से उत्पन्न हुआ हुआ है। कहते हैं कि आत्मार्थ के सिवा जिस जिस प्रकार से जीव ने शास्त्र की मान्यता करके सुतार्थता मानी है, वह सब शास्त्रीय अभिनिवेश है। आत्मार्थ के सिवा शास्त्र पढ़ के शास्त्र ज्ञान की चतुराई प्राप्त करके दूसरे पर अपना इम्प्रेशन, अपनी महत्ता, अपनी विशेषता दिखाने का भाव या किसी भी प्रकार का आत्मार्थ के अलावा किसी भी प्रकार का लौकिक प्रयोजन, ये सब शास्त्रीय अभिनिवेश है। स्वच्छंदता दूर नहीं हुई और सत्समागम का योग प्राप्त हुआ है, वो प्रत्यक्ष ज्ञानी मिला हो, उस योग में भी स्वच्छंदता के निर्वाह के लिए, इसलिए अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन वश उसी शास्त्र के किसी एक वचन को बहुवचन जैसा बताकर आधार दे रहे, देखो मैं ही प्रवृत्ति करता हूँ इसलिए शास्त्र में ऐसा लिखा है, किसी एक बात को अधिक महत्ता देकर, दोनों में मुख्य साधन जो सत समागम है, प्रत्यक्ष समागम जो मुख्य साधन है, शास्त्र को उसके समान कहता है कि सत समागम करो या शास्त्र पढ़ो, दोनों को वचन तो है ज्ञानियों के तो शास्त्र तो है आचार्यों के वचन, और ये तो है अविरत समीक दृष्टि। कहते हैं कि ऐसे जो बराबर बताते हैं या शास्त्र को, शास्त्र पर उसे विशेष भार देता है कि ये तो ऊंची कोटी के वचन है, उस जीव को भी अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है, उसका अभिनिवेश प्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश भी नहीं, अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है, ऐसा कहा पता ही नहीं चले जीव को, माने के हम तो मनुष्य है, शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं, ऐरे गेरे नहीं है, हमें शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्या हो गया, हो गए ज्ञान ज्ञानी, लेकिन हमें तो आचार्यों का वचन का योग रहता है, उसमें से अपने आत्मा को बहुत मिलता है, आत्मा को बहुत मिलना तो कहीं दूर रहा, लेकिन उनको प्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश नहीं, अभिनिवेश तो बुरा है ही, इसमें भी दो भेद, प्रशस्त वाले ये तो हल्के प्रकार का अभिनिवेश हो गया
जी,
अभिनिवेश मैंने गलत अभिप्राय, मैंने विपरीत अभिप्राय को अभिनिवेश कहते हैं, वो अभिनिवेश का अर्थ ही ऐसा होता है, विपरीत अभिप्राय को ही का नाम ही अभिनिवेश है, एक शब्द में दोनों का अर्थ होता है, विपरीत अभिप्राय उसका नाम अभिनिवेश, सम्यक ज्ञान की यह परिभाषा है, अभिनिवेश रहित जो होता है वही अभिनिवेश रहित ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान है, और अभिनिवेश को अभिप्राय सामान्य तौर से कहें तो विपरीत शब्द लगाना चाहिए, आत्मा के समझने के लिए शास्त्र उपकारी है, लेकिन किसको कि वह भी स्वच्छंद रहित पुरुष हो, इतना ध्यान रखकर शास्त्र का विचार किया जाए तो वह शास्त्र अभिनिवेश गिनने योग्य नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञानी का योग हो, उसकी अवगणना करें, उसको गौण करें और स्वयं का शास्त्र अध्ययन को नित्य करें, तो ये अप्रत्यक्ष शास्त्र अभिनिवेश में खड़ा है, उसका मिथ्यात्मा ज्ञान भी हुआ। इसलिए यहाँ ये कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन करना चाहिए। अगर मोक्ष की आवश्यकता है तो इस विषय में ये पर्याप्त बात है। यह ज्ञान मार्ग की श्रेणी कही, ज्ञान मार्ग में चलने वाले जीव की ऊर्ध्वगमन की ये बात हमने बताई। श्रेणी में ऊर्ध्व जाता है उसको श्रेणी कहते हैं। इसे प्राप्त किए बिना अन्य मार्ग से मोक्ष नहीं है। भले ही तुझे समझ में इतना जल्दी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आखिर में वो कहते हैं अंतिम ये बात है कि इस गुप्त तत्व को, एक ऐसा गुप्त तत्व हमने यहाँ बताया है, प्रकट रूप से भले तुम्हें दिखने को नहीं आए, लेकिन इस गुप्त तत्व को उसका जो आराधन करता है वह प्रत्यक्ष अमृत का प्राप्त करके अभय हो जाता है। वो मरेगा नहीं, दूसरे मर जाएंगे या डूब जाएंगे संसार में। ये जो है जैसे अंतर में अपनी ध्रुव आत्मा है, वो एक ऐसा स्थान है कि वहां जाने वाले डूबते नहीं, संसार में पीसते नहीं। ये जो चक्की होती है ना, चक्की में जो दाने डाले जाते हैं वो पीले के पास रह जाते हैं, वो पीसते नहीं। और जो जिस जो दोनों कड़ में आ जाते हैं उसका आटा हो जाता है, ये ध्रुव खिला है अंतर में, उसके पास जाने वाले जैसे पीछे नहीं जाते, वैसे बाहर में ऐसा ध्रुव आत्मा प्रकट शक्ति को मौजूद है, व्यक्त है, प्रकट अनुभव रूप है। ऐसे सुख पुरुष जो है वो ध्रुव सत है, इनके लिए तो ये बाहर में ध्रुव सत है, भीतर के ध्रुव सत को प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है, यही एक दरवाजा है। इसको खुला रहना दीजिए, उसको कभी बंद नहीं करना, वरना है प्रवेश करने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है बाहर। इसलिए कहा है कि इस गुप्त तत्व है, बहुत रहस्यमय विषय है, इसका आराधन करता है वो अमृत को प्राप्त करता है, और उनका भाई भ्रम भव भ्रमण का जो भय है चला जाता है, निर्भय हो जाता है, छूट जाता है। एक टुकड़ा दिया है 236 नंबर के लिए, योग्यता ज्ञान प्राप्ति के लिए बलवान कारण है। शुक्रा ने एक वचन को यहाँ संकलन करने का इतना ही हेतु है कि अपनी योग्यता के विषय में विचार तो नहीं करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े महापरमात्म का अध्ययन करें, कोई फलश्रुति नहीं आती है। जैसे अपने यहाँ की टिप्पणी करते हैं तो देखो ना, संप्रदाय में कैसे लोग हैं, कोई समझते नहीं, जानते नहीं, विचार करते नहीं इसका कोई, और व्रत विकार करते, वो कर लेते ऐसा करते टिप्पणी करते, क्या मिलेगा इसमें से, कुछ नहीं होगा ऐसा। मामूली समझदारी में भी लोग कर लेते हैं। वैसी ही बात है, ऐसा दृष्टांत जैसी बात है कि जैसे अन्य क्रिया बाह्य क्रिया में